हरे कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 15 अत्यंत ही अद्भुत श्लोक है। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, नादत्ति कस्य चित् पापम् न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ति कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ति कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ति कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ति कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। शब्दों का अर्थ, न कभी नहीं, आदत्ते स्वीकार करता है, कश्चित् कश्चित् यानी किसी का, पापम अपराध, न न तो च भी एव निश्चय ही सुकृतम अर्थात पुण्य को विभु भगवान या परमेश्वर अज्ञानेन आवृतम ज्ञान अज्ञानेन अज्ञान से आवृतम आच्छादित ज्ञानम ज्ञान तेन मोहयन्ति जन्तवः तेन उससे मोहयन्ति मोहग्रस्त होते हैं जन्तवः जीवगण। अनुवाद, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहदारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान धन बल यश सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है, वह सदैव आत्मतृप्त है और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहग्रस्त होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिससे जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। जीव पराप्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान की वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीव आत्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूरी करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख तथा दुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी है, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन शोची होत नाही, प्रभु शोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एष ओहयवे साधु कर्म कार्यति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नी नेशते, एष ओ सवा साधु कर्म कारयित यमधो नेशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों के में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे, और भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वे नरक में जाए। कौशित की उपनिषद 3.8। अज्ञो जन्तुरनीशोयम् आत्मानः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेवृतो गच्छे स्वर्गं वाश्वभ्रमेव च। अर्थात जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है, फलस्वरूप स्वभावतः सच्चित आनंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने वास्तविक अस्तित्व को की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वार बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव ये कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2.1.38 में भी करते हैं, वैषम्ये नैर्धन्ये न सापेक्षवाद तथा ही दर्शयति। अर्थात भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करता है ना किसी को चाहता है, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस अत्यंत ही अद्भुत ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं तराति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाश्च श्रीरूपं साकृजातं सह गणरघुनाथ वितं तं सजीवम् सत्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सह गणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिभ्ये वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरम् शिवासुदी गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। अत्यंत सुंदर भगवान अभी कर्म के विषय में बता रहे हैं कि कर्म आखिर करता कौन है, वास्तव में करता है कौन। तो पहले भगवान ने कहा कि ये जो देह है वो क्या है, नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्य, कि ये तो नगरी है, एक शहर है, वो तो जड़ है, उसके द्वारा तो कार्य हो नहीं रहा है और आत्मा जो है वो इसके अंदर रहती है। तो फिर आत्मा कार्य करती, तो भगवान ने 14 में कहा न करते त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ये जो लोकस्य सृजति प्रभु, ये जो प्रभु है वो ना तो कार्य कर रहा है ना कराने के लिए किसी को प्रेरित कर रहा है, यानी कि उस प्रभु की, प्रभु यहाँ पर आत्मा को कहा गया। अभी इसमें प्रभु आत्मा को कहा गया और दूसरे श्लोक आज हम जो पढ़ेंगे ना उसमें विभु शब्द है और वो विभु किसको कहा गया, भगवान को कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे जो देह का प्रभु है यानी कि जो आत्मा है वो तो ना कार्य कर रहा है और ना ही कार्य करने के लिए किसी को प्रेरित कर रहा है, इसलिए क्योंकि वो कार्य नहीं कर रहा न कर्म फल संयोगात, उसको कर्म के फल से भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और आगे स्वभावतः प्रवृत्त, क्योंकि स्वभावस्तु ये जो प्रकृति है ना उसके अनुसार कार्य हो रहा है सब, मतलब जो ये भौतिक प्रकृति है वास्तव में जीव जो वो वास्तविक जो जीव की स्थिति है वो क्या है, विशुद्ध आत्मा है और वो कभी भी किसी भी कार्य को प्रेरित नहीं करता। लेकिन जब जीव आत्मा इस संसार में आता है तो क्या भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उस पर असर अंदाज हो जाते हैं। फिर जीव क्या करता है, इंडिपेंडेंटली भगवान को के अलग होकर खुद एंजॉय करना चाहता है, जिसके कारण भौतिक प्रकृति जो है उसके कारण उसका उसके जो विशुद्ध ज्ञान है वो ढक जाता है और अज्ञान के कारण वो कार्य करने लगता है। ये सोचता है ज्ञान क्या है, मैं ही शरीर हूँ और शरीर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, लेकिन इसका मतलब है वो कार्य कौन करा रहा है, भौतिक प्रकृति कार्य करा रही है उसको। लेकिन यहाँ पर फिर हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे एंड किया था कि यदि भौतिक प्रकृति कार्य करा रही है तो भौतिक प्रकृति तो भगवान के निर्देशन में कार्य कर रही है, तो इनडायरेक्टली ये कार्य कौन करा रहा है, भगवान ही करा रहे, क्योंकि भौतिक प्रकृति जो जय है फिर वो कार्य कौन करा रहा है, कृष्ण भगवान ही करा रहा है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर कोई जीव ऐसे कह सकते हैं क्योंकि भगवान ही वास्तविक करता है, तो जो भी अपवित्र या सिंफुल रिएक्शंस जो अपराध हम करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएंगे, भगवान उठाएंगे, है ना, ऐसा कोई सोच सकता है। परंतु भगवान यहाँ पर अपने बारे में साफ साफ बता रहे हैं, वे कहते हैं नादत्ते कश्चित् पापम, कस्यचित् पापम, मैं किसी के न चैव सुकृतम विभु, पाप कहते हैं अपराध को, सुकृत कहते हैं पुण्य को, किसी के भी पुण्य पाप को भगवान स्वीकार नहीं करता है। भगवान को भगवान के लिए भगवान किसी भी जीव के पुण्य और पाप के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी कि यहाँ पर भगवान ने साफ साफ यहाँ पर अपने बारे में बताया कि जैसे मैं भगवान हूँ, अगर मुझे कोई नहीं आके बोले कि क्योंकि भौतिक प्रकृति तुम्हारे अंदर में कार्य कर रही है तो तुम ही हमारे पापों और पुण्यों के जिम्मेदार हो, भगवान कहते हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो, जो परमात्मा है जो परमेश्वर है वो ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और ना ही पुण्यों को। फिर आखिर कौन उत्तरदायी है हमारे अपराधों का और हमारे पुण्यों का, इसको हम थोड़े से एग्जाम्पल्स के जरिए सुनने समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में क्या है, एग्जाम्पल जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि बात समझ में आए, एग्जाम्पल के अंदर हमको नहीं अटक के रहना है, उस एग्जाम्पल से भगवान के श्लोक को समझना है। जैसे एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है, वो कोई अपराध करता है और उसको पुलिस पकड़ के आती है और जज उसको सजा देता है, जो न्यायाधीश है वो उसके लिए सजा सुनाता है हैंग टिल डेथ, है ना, इसको इतना उसको लटका दो कि वो मर जाए। तो क्रिमिनल अगर ये सोचता है कि जज मेरा दुश्मन है इसलिए उसने मुझे मरवाया, परंतु ऐसा तो नहीं है। और दूसरा ये कि जज क्या कर रहा है, सिर्फ सजा दे रहा है, सजा बता रहा है, पेन से उसने लिख लिया, साइन मार दी, और बाकी उसको मारता कौन है, जो एग्जीक्यूशनर होते हैं वो जो मारते हैं फांसी देते हैं वो होते हैं। इसका मतलब होता है जज इज एक्टिंग एज इम्पार्शियल पर्सन एंड एग्जीक्यूशनर्स आर अंडर द कंट्रोल बाय द जज, है ना। उसी तरह से जीव जब कोई कार्य करता है तो वास्तव में इच्छा उसकी अपनी होती है, और ये जो जीव की इच्छा है वो क्या है, जो सबसे पहली वजह है कार्य की। भगवान आगे बताएंगे कार्य के कितने कारण होते हैं, तो पहली प्राइमरी कारण जो है वो क्या है, प्राइमरी डूअर जीव की इच्छा है। क्योंकि अब क्रिमिनल को जो सजा मिली है वास्तव में उसका कारण तो वो क्रिमिनल ही है ना, उसी की इच्छा के कारण उसने कार्य किया, और फिर अब सजा किसने दी, जज ने। तो इसका मतलब होता है जज इज द अल्टीमेट डूअर, है ना, वो वास्तविक कार्य कराने वाला है, सुप्रीम कारण है, और कार्य करा किसने, अब इसका मतलब होता है भगवान की इच्छा से कार्य कौन कर रहा है, जो एग्जीक्यूटर है वो कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब एग्जीक्यूटर कैसे है, वो भौतिक प्रकृति है, वो सेकेंडरी इसका कारण है कार्य का। इट मीन्स देर आर थ्री डूअर्स, है ना, एक अकेला खाली आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, खाली भगवान कार्य नहीं कर रहा है और खाली भौतिक जो प्रकृति है वो कार्य नहीं कर रही है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी, आपको कहीं जाना हो, आप कहीं जाना चाहते हो, समझो आप शमशान घाट जाना चाहते हो, तो आप एक टैक्सी को रोकते हो और टैक्सी वाले को कहते हो कि मुझे प्लीज टेक मी शमशान घाट, है ना। तो वहाँ शमशान घाट पर पहुँचने के बाद आप टैक्सी वाले को बोलो कि आपने मुझे इधर क्यों लाया, मुझे यहाँ पर नहीं आना था बल्कि मुझे तो टेम्पल जाना था। तो टैक्सी वाला बोलेगा कि मैं यहाँ पर आपको इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपने ऐसा कहा था, मुझे आपने ऐसा बोला था, आपने ऐसी इच्छा की थी, इसीलिए मैं आपको लेकर आया। तो वास्तव में क्या है, इच्छा आपने की, तो इसका मतलब है प्राइमरी डूअर कौन है, वो आप हैं। टैक्सी वाले ने टैक्सी को ड्राइव किया, वास्तव में लाए, बिठाया किसके अंदर था, टैक्सी चली, टैक्सी थी, टैक्सी के अंदर बैठे थे तभी आप आए थे। उसी तरह से टैक्सी इज अ सेकेंडरी डूअर एंड टैक्सी वाला इज द सुप्रीम डूअर, वो है अल्टीमेट डूअर। वास्तव में भगवान इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं कि जब एक जीव आत्मा इच्छा करती है ना, जब एक जीव आत्मा इच्छा करती है उसी के बाद कार्य होता है, तो उसका उस कार्य को आपको भुगतना पड़ेगा, है ना। अगर टैक्सी वाला अपनी मर्जी से कार्य कर रहा है और टैक्सी अपनी मर्जी से चल रही है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, है ना। अगर जज ने अपनी मर्जी से, आपने अपनी इच्छा अंदर नहीं रखी, तो जज ने जो फैसला किया उसके आप जिम्मेदार नहीं हो। लेकिन क्योंकि आपकी इच्छा सेंटर में आ रही है, इसके कारण भुगतेगा कौन, आप भुगतोगे। यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि वास्तव में हम कोई भी कार्य भौतिक प्रकृति और भगवान की, भौतिक प्रकृति के सहयोग और भगवान की आज्ञा के बिना नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यदि आत्मा भौतिक प्रकृति के गुणों के अंदर आकर इच्छा नहीं कर रही है तो आत्मा कार्य नहीं कर रही है, और आत्मा यदि कार्य नहीं कर रही है तो उसे फल भुगतने की, फल भी नहीं भुगतने पड़ेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 5.10 में बताया था, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बस। संगम त्यक्त्वा करोति, यानी कर्म के अंदर और कर्म के फल के अंदर यदि जीव आसक्ति नहीं रखता है, संग को त्यागता है, क्यों, ब्राह्मण याद आया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को अपने समस्त कर्म और कर्मों के फल अर्पित कर देता है, तो लिप्यते न स पापेन, फिर उसे पाप से, पाप को भुगतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर तो वो कार्य कर ही नहीं रहा है। कार्य वो तब कर रहा है, जीव आत्मा कार्य तब कर रही है जब वो इच्छा कर रही है। यदि वो इच्छा नहीं कर रही है, इसका मतलब होता है वो कार्य से उसी प्रकार निर्लिप्त रहती है, पद्म पत्रम निवाम भसी, जिस प्रकार पद्म पत्र यानी लोटस फ्लावर जो होता है कीचड़ के अंदर या पानी के अंदर रहता हुआ कभी भी गीला नहीं होता। तो श्लोक में भगवान कहते हैं अज्ञाने नावितम ज्ञानम तेने मोहयन्ति जंतव, क्योंकि उनका जीव आत्मा का विशुद्ध ज्ञान अज्ञाने नावृतम, अज्ञान के कारण आवृत्त हो जाता है। पहले ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इस भौतिक प्रकृति यानी इस शरीर और शरीर से रिलेटेड किसी चीज से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरा तो एक ही नाता केवल भगवान के साथ है, और भगवान को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना मेरा कार्य है एकमात्र। तो वो ज्ञान, उसका क्या होता है, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति में आ जाता है और ये ज्ञान उसका छिप जाता है, अपने आप को शरीर समझने लगता है और शरीर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। तेने मोहयन्ति जंतव, तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं इसी के कारण मोहयन्ति, मोहग्रस्त होते हैं सारे जीव, जो जीवगण है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्लोक प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य भी दिया है और एक बहुत ही सुंदर शब्द है इस श्लोक के अंदर। सब श्लोक समझ में आ गया ना। भगवान कहते हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभु। विभु का मतलब श्री प्रभुपाद ने बहुत ही डिटेल्स दिया है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान धन बल यश सौंदर्य तथा त्याग से युक्त हो। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी या भगवान ने विभु शब्द क्यों यूज किया है, इसका एक बहुत ही जबरदस्त कारण है। वो कारण क्या है कि अगर आपके अंदर कोई कमी होती है तो आप कार्य करते हो, यानी कि कोई भी चीज की यदि आपके अंदर कमी होती है तो आप क्या करते हो, कार्य करवाते हो या करते हो। लेकिन भगवान तो न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि भगवान तो विभू है। भगवान के अंदर ज्ञान धन बल ऐश्वर्य त्याग की संपूर्ण मात्रा में है, संपूर्ण मात्रा में है। वे सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं। जी इच्छा तब कोई करता है जब वो पाप और पुण्य की इच्छा क्यों करता है, ताकि उसको किसी चीज की कमी हो, किसी चीज का अभाव हो। लेकिन भगवान तो आत्म तृप्त है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति को उत्पन्न नहीं करते कि हाँ मैं उसको तकलीफ पहुंचाऊं, मैं उसको खुश करूं। मतलब भगवान किसी के भी ना किसी से प्रेम करता है। भगवान कहते हैं समो हम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति मत्रि। कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान को प्रिय हो और कोई भी ऐसा नहीं है जिससे वो घृणा करते हो। भगवान सबके लिए समान है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जब सबके लिए समान है तो किसी किसी एक जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति क्यों उत्पन्न करेंगे। कि अगर कोई बोले कि भाई भगवान तुमने ये मेरे साथ क्यों किया, तो भगवान को क्या पड़ी है, भगवान को तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे कर्मों के अंदर। भगवान ने साफ साफ कह दिया ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम, ना मुझे तुम्हारे अपराधों और ना ही पुण्यों के ना फल चाहिए और ना ही उनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्योंकि भगवान संपूर्ण मात्रा में आत्म तृप्त है। ये भगवान के विषय में अब बात आई है तो थोड़ा सा भगवान, क्योंकि बहुत इतने समय से हम श्रीमद् भगवद गीता का कर्मयोग कर रहे हैं और भगवान कृष्ण के विषय में बात करने का समय बहुत कम मिलता है, तो आज क्योंकि कृष्ण के वैभव की बात आई है, कृष्ण की ब्यूटी, कृष्ण की सुंदरता, उसके विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करें कि भगवान इतने कम्प्लीट है, इतने आत्म तृप्त है कि उनको किसी के भी किसी को भी विचलित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान द्वारिका में पधार रहे थे उस टाइम पर सब लोग भगवान को देखते हैं, ठीक है, सबकी नजर भगवान। अब होता क्या है, जब लोग वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं तो आकाश में घनघोर बादल होते हैं और बिजली चमक रही होती है और घने बादल होते हैं, उस समय आकाश में सूर्य नहीं होता। और वर्षा के बाद जब दूसरी सुबह होती है तो सूर्य उदय होता है, परंतु जिस टाइम पर सूर्य उदय होता है उस समय चंद्रमा नहीं होता। भले ही सब एक साथ आकाश में हो लेकिन फिर भी दिखते नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है कि एक ही समय चंद्रमा, सूर्य, बादल, बिजली और वर्षा के बाद जो रेनबो होता है ना वो दिखे आसमान पर, एक ही समय आकाश में प्रदर्शित हो? क्या ऐसा कभी होता है कि जब चंद्रमा भी हो और है ना, चंद्रमा हो, सूर्य हो, बादल हो, लाइटिंग हो और रेनबो हो, वो सब एक साथ कभी नहीं दिखते? मतलब इतनी सुंदरता आकाश की कभी किसी ने नहीं देखी होगी। लेकिन सूर्य यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में पधार रहे हैं तो अत्यंत ही सुंदर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, पिता का पुत्र यजने रूपस्कृत प्रसून वैशय अभिवर्षित पति पिशंद वासा वनमालया बभौ गणो यतार्को रूप चाप वैद्युते। अर्थात पिता का पत्र यजनय रूपस्कृत, जब भगवान आ रहे थे तो उनका जो सुंदर शरीर, सुंदर जो श्याम वर्ण है, वो उनका शरीर मानसून के बादल की तरह दिख रहा था। जब कृष्ण पर पधार रहे थे तो कृष्ण के शीश पर जो छाता अम्ब्रेला लगी हुई थी वो इतनी चमक रही थी जैसे कि वो सूर्य की भांति चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य चमक रहा है उनके सर पर। और जो वो चल रहे थे तो जो द्वारिकावासी चामर डुला रहे थे जो कि चंद्रमा की भांति दिख रहा था, ऐसे सेमी सर्कल में जब चामर डुल रहा था। और कृष्ण ने क्या पहना हुआ था, पिशंगवासा अर्थात येल्लो धोती पहनी हुई थी जो कि बिजली की तरह चमक रही थी। और वनमाला, भगवान के गले में सुंदर वनमाला थी जो वर्षा के उपरांत रेनबो दिखता है ना आकाश पर, उसकी तरह दिख रही थी। तो सीन क्या था, चंद्रमा सूर्य बिजली बादल रेनबो सब एक साथ उपस्थित, यानी कृष्णा की सुंदरता के बारे में तो क्या कहें। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं नित्यम निरीक्षमाणानं, यानी भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जब उनको देख लेता है ना कोई तो फिर वो कभी तृप्त नहीं होता, उसको दिल करता है और देखो, मैं और देखूं। संसार में, इस संसार में क्या होता है, कोई सुंदर होता है तो जब आप पहली बार उसको देखते हो तो बहुत आकर्षित लगता है, बहुत बहुत उसको देखने का दिल करता है। फिर जब भी आप उसको दूसरे दिन देखते हो, तीसरे दिन ब दिन जब आप उसको देखते जाते हो तो क्या होता है, फिर उसकी सुंदरता का आकर्षण कम होता जाता है। ये मटेरियल बॉडी का आकर्षण जो है वो क्षणिक होता है, समाप्त हो जाता है, परंतु कृष्ण की सुंदरता जिसने उसे देखा, जिसने उसे पाया, जिसने उसे चाहा, उसका रस, उसका स्वाद, उसका आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और भी पहले से अधिक होता जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है प्रतिक्षण वर्धमान, ये प्रेम ऐसा है भगवान के साथ प्रेम, भगवान की समस्त ऐश्वर्य जो है उसको कभी कोई नहीं बता सकता। शेषनाग अपने हजार मुखों से सदैव भगवान की सुंदरता, भगवान के ज्ञान, भगवान के बल आदि की चर्चा करते रहते हैं, सारे वेद बताते रहते हैं, लेकिन वे लास्ट में कहते हैं नायति नायति, क्योंकि कोई चीज स्टॉप हो तो फिर उसकी कठिन बात बता सके ना। एक चीज जो हर एक क्षण वर्तमान हो रही है, एक एक क्षण में जो चीज बढ़ रही है, उसका आप मापदंड कैसे लगा सकते हो। उसी तरह भगवान के बल की बात अगर करें तो अनेक कथाएं, एक 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 भगवान ने तो पहले दिन से अपने बल का प्रदर्शन करना शुरू किया। एक बहुत ही विचित्र कथा भगवान के बल के विषय में हम पढ़े तो महाभारत में आती है, जब परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, उस समय अश्वत्थामा ने तीर चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया। वास्तव में भक्तों ये ब्रह्मास्त्र इतना विनाशकारी है, जैसे आजकल जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, जो बॉम्ब्स होते हैं, उससे मिलियन टाइम्स ग्रेटर है। और उसने अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र एक गर्भ में बैठे हुए शिशु जो कि परीक्षित महाराज, उसको चलाया, वो एक सेकंड में उसको खत्म कर सकता था, परंतु उस समय भगवान गर्भ के अंदर चले गए और सुदर्शन चक्र को चलाया। और सुदर्शन चक्र वहां पर क्या कर रहा था, वास्तव में ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र इतनी गर्मी निकलती है उसमें से, इतनी आग निकलती है, इतनी तपिश निकलती है, लेकिन उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र कार्य क्या कार्य कर रहा था, उसने उस गर्मी को, उस तपिश को, उस आग को बिल्कुल उस तरह से समाप्त कर दिया जिस प्रकार सूर्य की गर्मी जो दीव ड्रॉप्स होते हैं ना, शबनम के कतरे, उनको कैसे खत्म कर देते, सुखा देते, तो उसके लिए भगवान को इतने बड़े ब्रह्मास्त्र को खत्म करने के लिए या उसको शांत करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। भगवान का बल, बल की क्या व्याख्या में, यहाँ पर बहुत बहुत, जैसे भगवान के सारे ऐश्वर्य कृष्ण हम बात करेंगे तो हमारा जो टॉपिक है उसके हिसाब से अगर हम बोलें तो यहाँ पर क्या है, भगवान के अंदर इतना ऐश्वर्य है, भगवान के इतने अपॉर्चुनिटीज हैं कि उसको किसी के ना अच्छे कार्य और बुरे कार्य का रिजल्ट भुगतने के लिए इच्छा नहीं होती है। बिकॉज कृष्ण इज अ फुल ऑफ ऑल अपॉलेंसेस। और जीव क्या करता है, अज्ञान नावितम ज्ञानम तेने मोहयंती जीव, अपितु जीव अज्ञान से मोहग्रस्त हो जाता है। और जीव की ऐसी परिस्थिति की, जीव अपने जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है, जैसे उस टैक्सी वाले को खुद बोला ना इधर चलो, तो उसी तरह से इच्छा करता है जीव। कोई भी आज हमें जो भी प्राप्त है वो हमारी इच्छा के कारण प्राप्त है, लेकिन इच्छा कैसे पूरी होती है, भगवान पूरी करते हैं और भौतिक प्रकृति के अनुसार। जैसे श्री प्रभुपाद जी अक्सर बताते हैं कि जिसको अधिक खाने की इच्छा होती है तो फिर भगवान क्या करते हैं, इच्छा आपकी पूरी करते हैं भगवान और भौतिक प्रकृति के द्वारा आपको हाथी का शरीर देकर, ठीक है। तो फिर उसमें भगवान की इच्छा नहीं है, वास्तविक तो आपका अज्ञान है कि भगवान की सेवा करने की बजाय हम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कोई माध्यम ढूंढ रहे होते हैं, मतलब अपने इस शरीर को। इसी के कारण श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। अब वो क्या रहा है श्री प्रभुपाद, हम तात्पर्य को पूरा पढ़ेंगे वापस से, क्योंकि बहुत ही समझने की बातें हैं इसमें। जीव परा प्रकृति के कारण अज्ञान से पूर्ण, ज्ञान से पूर्ण है। परा प्रकृति क्या है, जो आत्मा है हमारी शुद्ध आत्मा, वो ज्ञान से परिपूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। सीमित शक्ति क्या है, जो ये प्रकृति है ना, भौतिक प्रकृति जिसके अंदर गुण है, और उसके कारण वो अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि भगवान के पास संपूर्ण वैभव है, किंतु जीव में नहीं है, जीव के अंदर पावर नहीं है इतना। भगवान की शक्ति के विषय में हमने पढ़ा, लेकिन जीव के अंदर नहीं है। क्यों, भले ही वो जीव भगवान का अंश है लेकिन भगवान विभु है। यहाँ पर हम लोगों ने विभु शब्द पढ़ा, उसी की व्याख्या करें श्री प्रभुपाद जी। भगवान विभु है और जीव क्या है, अणु है। जीव आत्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अब इच्छा भले जीव करता रहे लेकिन जब तक भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है तब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी उसकी। तो यहाँ पर कहा कि जीव इच्छा करता है लेकिन पूरा कौन करता है, सर्वशक्तिमान भगवान करता है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। अब भगवान क्या करता, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दूं कि एक बच्चा है, उसकी इच्छा है कि वो बहुत बड़ा, अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर है मतलब 30-40 किलो का है, वो नहीं उठा सकता है, लेकिन उसकी इच्छा है कि मुझे उठानी है। अब अक्सर ऐसा होता है कि मंदिर में घंटी लगी होती है और वो घंटी को बजा नहीं सकता है, बहुत इच्छा प्रकट करता है, मुझे बजानी, जंपिंग करता है, नहीं कर सकता है। तो पिताजी क्या करते हैं, उसको गोदी में उठाते हैं और वो घंटी बजाता है। वास्तव में वो क्यों किया, क्योंकि वो उसकी इच्छा थी। तो उसी तरह से जीव अज्ञान के द्वारा जो इच्छा करता है भगवान उसको पूरा करते हैं भौतिक प्रकृति के द्वारा, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। लेकिन अगर वो घंटा बजाने के टाइम पर उसके हाथ में लगता है तो उसके लिए पिताजी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसने किया इसलिए क्योंकि उसकी इच्छा थी। अतः मोहग्रस्त होने के से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख तथा दुख को भोगता है। अब क्योंकि वो मोहित हो गया, उसने सोचा कि शायद मैं ये शरीर हूँ जिसके कारण मुझे इतना दुख और सुख मिल रहा है, तो वो दुख और सुख को भोग रहा है क्योंकि अपना अज्ञान तो उसका अज्ञान के कारण तो वो इच्छा कर रहा है, और इच्छा के कारण उसको शरीर मिल रहा और उसी शरीर में अटक कर रह जाता। भगवान परमात्मा के रूप में जीव का चिर संगी है, फलतः वह प्रत्येक जीव की इच्छा को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। भगवान कहाँ रहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनते, वो हृदय के अंदर है, वो दूर थोड़े है। हम इच्छा करते हैं उसे पता चल जाता है, भगवान को जाके बताने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान मैं ये चाहता हूँ या ये मैं केवल तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ, ये भी भगवान को बताने की जरूरत नहीं है। वो हृदय के अंदर बैठते हैं, हमारे हृदय की गतिविधि को समझते हैं, हमारे हृदय को भाव को समझते हैं। उसी समय हमारे कर्मों की श्रृंखला खत्म हो जाएगी जब हम अपने हृदय से सिंसियरली और सीरियसली कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे। लेकिन यदि जरा सी भी दुर्गंध इच्छा पूर्ति की या इंद्रिय तृष्टि की रह गई तो वो फंस जाएगी। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये इच्छा ही तो है जो आपको बंधन में डालती है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। भगवान क्या करते हैं? आपकी योग्यता के अनुसार आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। कर्मों को भी देखते हैं पिछले अनुसार, और जब जब आपके पूरे कर्म हो जाते कि भाई हाँ ठीक है अब इसको ऐसा जन्म मिलना चाहिए तो मिल जाता है। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर श्रील प्रभुपाद ने लाइन लिखी है, आपन सोची हो तना ही प्रभु सोची तत्काल। हम भले जितना ही चाहते रहे आज होना चाहिए कार्य, आज होना चाहिए, आज होना चाहिए, लेकिन जब तक आप योग्य नहीं होगी, जब तक आप डिजर्व नहीं करोगे तब तक आपको प्राप्त नहीं होगा। तो जब आप डिजर्व करते हो तो प्रभु सोचते हैं, उस टाइम पर ही हो जाता है। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान नहीं होता। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसके लिए आप कंप्लीट शक्तिमान नहीं हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए? किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। अब देखो आप इच्छा कर रहे हो लेकिन भगवान न्यूट्रल हैं, वो निष्पक्ष हैं, गैर जानबदार हैं, और उसी के कारण आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। लेकिन आप जो अणुजीव आत्मा है, ये जो मामूली से जीव आत्मा है, उनकी इच्छाओं के अंदर भगवान कोई भी इंटरफेयर नहीं करते कि नहीं आप ये वाली इच्छा नहीं करो, आप ऐसा करो, ये वाली इच्छा नहीं करो। नहीं, आपकी जो इच्छा है आपकी योग्यता के अनुसार आप उसको पूरा कर देते हैं भौतिक प्रकृति के द्वारा। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है, अब यहाँ पर श्रीपा जी मेन पॉइंट पर आ गए हैं और वो कहते हैं अगर आप कृष्ण की इच्छा करते हो तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं। यानी कि अगर आप भौतिक इच्छाएं करते हो तो भगवान कुछ भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन इसे भगवान ने भी कहा ना 2.9.29 में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन देते हो माम भक्ता मई ते तेषु चापरम। ये मेरा, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव है ऐसा, जो मुझसे प्रेम करते हैं मुझे उनसे प्रेम हो जाता है। तो भगवान, अगर कोई भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और इस प्रकार प्रोत्साहन देते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वो सदैव सुखी रहे। क्योंकि जी कितना दुखी है ये भगवान से देखा नहीं जाता, और जैसे थोड़ी सी भी इच्छा उसके हृदय में आ जाती है कि मैं भगवान की भक्ति करूं तो भगवान जो है उसको बहुत प्रोत्साहन देते हैं, कंप्लीट सपोर्ट देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी भगवान की भक्ति में आगे बढ़े और पूर्ण तरह से सुखी हो जाए। और आगे चंद उपनिषदों के श्लोक से श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि भले ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान किसी को अच्छा दे रहे हैं, किसी को खराब दे रहे हैं, किसी को अच्छा सुखी संसार दिया, किसी को दुख दिए, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जीव को जो कुछ भी मिल रहा है अपनी इच्छाओं के कारण, और इच्छा क्यों हो रही है? अज्ञान के कारण हो रही है, और अज्ञान के कारण जब वो इच्छा करता है तो उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। लेकिन वो फल भी भगवान जो है वो देते हैं और भौतिक प्रकृति के द्वारा उसको प्राप्त होता है। वास्तव में हमें क्या समझना है कि यदि हम कार्य करते हैं कोई भी कार्य फल की इच्छा से करते हैं तो उस कर्म का फल प्राप्त होगा, उसके बदले में हमें जन्म मरण की श्रृंखला प्राप्त होगी। और यदि कर्म फल से अनासक्ति है, इच्छा नहीं है, तो व्यक्ति क्या है? कर्मयोगी है, जो भगवान हमें बताए ना, कर्मयोगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि व्यक्ति कर्मयोगी बने तो कर्म के प्रति लापरवाही बने, लापरवाही नहीं बरतनी है, कर्म के प्रति गैर जिम्मेदार नहीं होना है, सिर्फ कर्म के फल को त्यागना है, कर्म के जो फल की इच्छा है ना, यानी अनासक्ति होनी है लेकिन कर्म से गैर जिम्मेदार नहीं होना। जैसे अर्जुन ने, भले अर्जुन को अब पता चला कि मुझे कार्य करना है लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, उसका फल मुझे नहीं भोगना है, भले हार हो या जीत जो भी हो मुझे कृष्ण की प्रसन्नता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने युद्ध में कोई गैर जिम्मेदारी बरती कि भले ठीक है अभी कोई मरता है नहीं मरता है, मुझे तो वैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो फिर भी पूरे एहसास के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ रहा था। यानी भगवान के लिए कार्य करो तो बिल्कुल ऐसे कि भगवान को प्रसन्न करना है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को मेन चीज क्या बता रहे हैं कि अगर आप कार्य करते हो या संन्यास लेते हो, जैसे 5 श्लोक 5 में पढ़ा था हमने, यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम साख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, कि अगर आप संन्यास भी ले लेते हो और उसमें कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आप योग से कार्य करते हो, यानी कर्म योग में कार्य करते हो, तो उसका एक ही है, यत सांख्यम एकम सांख्यम च योगम च, वो दोनों एक ही फल प्राप्त होंगे, यह पश्यति स पश्यति। फिर भी भगवान चाहते क्या है कि आपको ईजी लगेगा, सुख किससे मिलेगा? जब आप कर्मयोग करोगे, क्योंकि कर्मयोग तो आपका स्वभाव है। 3 में बताया भगवान ने, जे यह च नित्य संन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम मंदात्म प्रमुच्यते, कि अगर आप, क्योंकि आपकी स्टेज ऐसी है कि आपको संन्यास नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेन तो क्या है कि आपको संन्यास का भी फल कर्मयोग से मिल रहा है, तो संन्यास आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, कर्मयोग क्यों ज्यादा बेहतर आपके लिए? तो भगवान ने बताया, सबसे पहले तो आप उसके पात्र नहीं हो, दूसरा क्योंकि आप अभी देह में हो तो आपके लिए कर्मों का त्याग करना बहुत कठिन है, और तीसरा ये कि क्योंकि समाज के लिए भी तो आपको गलत, मेरे भगवान ने बताया ना कि श्रेष्ठ पुरुष इसलिए कार्य करता है ताकि समाज को प्रेरणा मिले, तो आप कार्य करना छोड़ दोगे तो समाज को भी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो भगवान ने बताया कि यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योग गम्यते, तो जो सांख्य योग से आपको फल मिल रहा है वही आपको योग कर्म योग से मिल रहा है, क्योंकि कार्य आप नहीं कर रहे हो, कार्य क्यों कौन कर रहा है? सांख्य योग अपनाने का या संन्यास लेने का मकसद क्या है कि आप कर्म और कर्म फल से छूट जाओ। लेकिन यदि आप ये बुद्धि से कार्य कर रहे हो कि मैं कार्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, अपनी इच्छा कर्म और कर्म के फल में नहीं देते हो, तो आपको सेम फल मिल रहा है ना, फिर आप सेम फल प्राप्त करने के लिए मुश्किल वाला रास्ता क्यों उठा रहे हो? आप इजी वाला उठाओ ना, कर्म योग करो, आप फिर कर्म योग ज्यादा बेहतर है। हाँ अच्छा, तो आप सबको ये समझ गया। अब भगवान आगे हमें ये बताएंगे कि जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है, जब वो जान लेता है कि ये कर्म कौन कर रहा है, भौतिक प्रकृति कृष्ण भगवान और व्यक्ति की इच्छा मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, और उसके कारण यदि इच्छा उसके अंदर होती है तो फिर जीव को भुगतना पड़ता है, ये सब जानने का क्या फायदा है? ये सब जान कर क्या फायदा होगा वो भगवान कल बताएंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।